आर्यांश पिछले काफी देर से दीवा के ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। उसे दीवा पर पूरा यकीन था, पर साथ ही वो डॉक्टर की बात को भी इग्नोर नहीं कर सकता था, जिन्होंने उसे हर तरह के रिजल्ट के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। समय अपनी रफ्तार से ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन आर्यांश को वो कुछ ज्यादा ही धीमी गति से चलता हुआ प्रतीत हो रहा था। सुबह के 4 के करीब ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई और इसी के साथ उसका दरवाजा खुला। आर्यांश जल्दी से खड़ा हो गया था, उसकी निगाहें एकटक दरवाजे को देख रही थीं। आखिर उसका इंतजार पूरा हो गया था, पर यह इंतजार कितना सफल रहने वाला था ये उसे अब पता चलने वाला था। अगले ही मिनट दीवा और अटेंडिंग टीम बाहर आ गई थी। दीवा आर्यांश के पास गई और हल्के से सिर हिलाकर कहा, सर्जरी सक्सेसफुल रही। आर्यांश के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने आगे बढ़कर दीवा को गले लगाना चाहा, लेकिन दीवा ने उसे इधर उधर देखने का इशारा किया, जहां बाकी स्टाफ खड़ा हुआ था। आर्यांश के कदम वहीं पर रुक गए थे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि आप कर लोगे। फाइनली अब सुमन माँ एक हेल्दी और लंबी लाइफ बिता सकती हैं, आर्यांश ने फिलहाल इतना ही कहा। आर्यांश की बात सुनते ही सुमन की सर्जरी के लिए गए स्टाफ ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन सबके चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर एक पल के लिए आर्यांश भी घबरा गया था। क्या वो ठीक नहीं है? आर्यांश ने झिझकते हुए पूछा। ठीक कहना गलत होगा मिस्टर कपूर, सुमन का ट्रीटमेंट शुरू से ही हैंडल कर रहे डॉक्टर भट्ट ने कहा, पर फिलहाल स्टेबल है। डॉक्टर गोइंका ने ये ऑपरेशन खुद के प्रोफेशन को खतरे में रखकर किया था। सच कहूं तो हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा। ओटी में सर्जरी के दौरान भी काफी कॉम्प्लिकेशंस आए थे और उनको संभालना आसान नहीं रहा। जैसे तैसे करके सर्जरी तो सक्सेसफुल हो गई है, लेकिन आपको उनका बहुत ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो हमें उन्हें हॉस्पिटल में 3 वीक्स के कम्प्लीट ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। ये अगले 6 महीने में ही डिसाइड होगा कि वो एक हेल्दी और लंबी लाइफ बिता पाएंगी या नहीं। मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगा, आर्यांश ने जवाब दिया। हालांकि आर्यांश ने पृथ्वी से यही वादा किया था कि सुमन के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और जैसे ही वो इस दुनिया को अलविदा कहेंगी वो मुंबई लौट आएगा। वो पृथ्वी से किए वादे को भूल नहीं रहा था, पर फिलहाल सुमन का ख्याल रखना उसके लिए ज्यादा जरूरी था। डॉक्टर से बात होते ही आर्यांश ने दीवा की तरफ देखा और कहा, तुम काफी देर से अंदर थीं, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। हाँ बस सुमन माँ को आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद हम लोग आराम करने जा सकते हैं, तुम्हें भी रेस्ट कर लेना चाहिए। वो अब ठीक है और डॉक्टर तुम्हें इतनी आसानी से उनसे मिलने की परमिशन नहीं देंगे, 3 दिन तक तो बिल्कुल नहीं, दीवा ने आर्यांश को समझाया। आर्यांश ने हल्के से सिर हिला दिया था। उसने पूरे स्टाफ को हल्का सा सर झुकाकर थैंक यू कहा। जब ऑपरेशन थिएटर से सुमन को आईसीयू के अंदर शिफ्ट कर रहे थे, उस वक्त आर्यांश ने उनकी एक हल्की सी झलक देखी। सुमन को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखकर उसकी आंखों में सुकून के भाव उभर आए थे। इस दौरान दीवा ने चेंज कर लिया था। आफ्टर सर्जरी प्रोसेस करने के बाद दीवा आर्यांश के साथ अपने कमरे में आ गई थी। कमरे के अंदर घुसते ही दीवा सीधा सोफे पर पसर गई थी। ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से उसके पैरों में दर्द हो रहा था और वो काफी थक भी गई थी। ऐसा नहीं था कि दीवा पहली बार किसी की सर्जरी करके इस तरह थक कर लौटी थी, पर हाँ आर्यांश अपनी आंखों के सामने ये सब पहली बार ही दीवा को करते हुए देख रहा था। इससे उसे समझ आ रहा था कि एक डॉक्टर होना सच में काफी मुश्किल भरा काम होता है। उसने एक नज़र दीवा की तरफ देखा और फिर बाथरूम में चला गया था। दीवा की आंखें बंद थीं, उसका बस सोने का मन कर रहा था और कुछ नहीं। दीवा की आंख लगी रही थी कि तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसके पैरों को पकड़ा है। दीवा ने जल्दी से आंख खोलकर देखा तो वो आर्यांश था, जो दीवा के पैरों को पकड़कर उसे गर्म पानी के टब में रख रहा था। इसकी कोई जरूरत नहीं है आर्यांश, तुम खुद भी इतनी देर बाहर खड़े हुए थे, तुम्हें भी सो जाना चाहिए, दीवा हिचकिचाते हुए बोली। मैं खड़ा नहीं बैठा हुआ था और मुझसे ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत तुम्हें है। मुझे पता है मैं सुमन माँ के लिए थोड़ा सेल्फिश हो गया था और बार बार तुम पर प्रेशर डाल रहा था, ये मुझे तब फील नहीं हुआ, लेकिन जब तुम ऑपरेशन थिएटर के अंदर थी तब ख्याल आया कि मेरे बार बार कहने से तुम्हें अंदर ही अंदर कितना दबाव महसूस हुआ होगा। आई एम सॉरी दीवा, आर्यांश ने जवाब में कहा। वो दीवा के पैरों की हल्की हल्की मसाज कर रहा था। हाँ प्रेशर तो फील हो रहा था और साथ में डर भी लग रहा था कि कहीं मैं तुम्हारी उम्मीदों को ना तोड़ दूं। जो भी हो आज उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही और मेरे लिए यही काफी है, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, दीवा ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। आर्यांश आगे कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि अगर उसने बातचीत शुरू की तो दीवा सो नहीं पाएगी और उसकी आवाज से ही जाहिर हो रहा था कि वो अच्छी नींद चाहती है। कुछ देर बाद जब दीवा सो गई थी तब आर्यांश ने उसके पैरों को पानी से निकाला और उसे सोफे पर कंफर्टेबल पोजिशन में लेटा दिया था। आर्यांश भी वहीं बेड पर लेट गया था। अगली सुबह दीवा की आंख दोपहर के आसपास खुली थी। उसने देखा कि आर्यांश अब तक सो रहा था, न जाने कब उसने इतनी रातों के बाद चैन की नींद ली थी। दीवा उठकर आर्यांश के बेड के पास जमीन पर बैठ गई थी। वो खोई हुई निगाहों से उसे देख रही थी। पहले जब वे दोनों साथ में रहते थे तब कई बार दीवा पहले जागती थी तब वो आर्यांश को ऐसे ही देखती थी। वो नींद में काफी शांत नजर आ रहा था, उसके चेहरे की बनावट बिल्कुल परफेक्ट थी, जैसे किसी ने फुर्सत से उसे तराशा हो। दीवा ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और आर्यांश की फोटो क्लिक करने लगी। न जाने उसे ये मौका फिर मिले या ना मिले। पर अफसोस, दीवा ने फोटो क्लिक करना शुरू किया ही था कि किसी का कॉल आने की वजह से रिंग बजने लगी। इसी के साथ आर्यांश ने आंखें खोलकर दीवा की तरफ देखा, जो अपने मोबाइल का एंगल सेट करके उसके बिल्कुल पास बैठी हुई थी। आर्यांश ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो दीवा जबरदस्ती मुस्कुरा दी थी। तुम्हें पता है ना मुझे ये पसंद नहीं है, आर्यांशु से आंखें दिखाते हुए बोला। आई स्वेयर, एक भी फोटो नहीं ली, कॉल आ गया, दीवा ने जल्दी से सफाई में कहा और उठकर कॉल रिसीव करने के लिए चली गई थी। वो सिर्फ एक दिन की छुट्टी लेकर गंगटोक आई थी, जबकि उसे यहाँ आए हुए एक हफ्ता बीत चुका था। ये कॉल पेलिंग के हॉस्पिटल से वैशाली ने किया था। वैशाली का नाम देखते ही दीवा समझ गई थी कि उसने क्यों कॉल किया होगा। दीवा ने जल्दी से कॉल रिसीव किया और दबी आवाज में कहा, आई नो मुझे यहाँ टाइम लग गया, जबकि वहाँ के काम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। मुझे ज्यादा नहीं, बस 4 दिन का टाइम और दो। बात करते हुए दीवा इस बात का खास ख्याल रख रही थी कि आर्यांश उसके पास ना आ जाए, वरना वो उसे यहाँ नहीं रहने देगा। दीवा बस सुमन के आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट होने तक वहां रहना चाहती थी। आईसीयू में रहने के दौरान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो सुमन का ख्याल रखे, आखिर ये सर्जरी उसी ने की थी। डॉक्टर सिप्पी बहुत गुस्सा है, वो यहाँ विजिट के लिए आए थे। वैसे ही कम फैसिलिटी के चलते यहाँ स्टाफ काम करने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से थोड़ा बहुत समझाने के लिए आप मौजूद थी तो आप ही चली गई। मैंने डॉक्टर सिप्पी को तो संभाल लिया है, लेकिन आपको वापस आना होगा डॉक्टर गोइंग का, वैशाली ने परेशान स्वर में कहा।
मैं आपकी उलझन को समझ सकती हूँ, लेकिन आपको भी मेरी परेशानी को समझना होगा वैशाली। मैंने यहाँ किसी पेशेंट की सर्जरी की है और मैं उसे इस तरह बीच में छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तो मुझे 4 दिन मत दो, लेकिन 3 दिन तक तुम्हें संभालना ही होगा। आई प्रॉमिस, 3 दिन के बाद मैं आ जाऊंगी, तब तक संभाल लो, मैं खुद डॉक्टर सिप्पी से बात करूंगी, दीवा ने प्लीडिंग वॉइस में कहा। ठीक है, उम्मीद है आप इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगी डॉक्टर, वैशाली ने जवाब दिया। आई प्रॉमिस, थैंक यू सो मच वैशाली, दीवा ने मुस्कुराकर कहा और कॉल कट कर दिया था। वैशाली से बात करके दीवा कमरे के अंदर गई तो आर्यांश वहां नहीं था। दीवा के चेहरे पर राहत के भाव थे कि आर्यांश ने उसकी बात नहीं सुनी थी। दीवा ने जल्दी से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम की तरफ पड़ गई थी। वो एक अच्छी नींद ले चुकी थी, अब उसे सुमन को भी देखना जरूरी था। सर्जरी के बाद सुमन को पूरी तरह मॉनिटर किया जा रहा था। उन्हें 2 दिन के बाद होश आ गया था, फिर भी उनकी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए उन्हें 1 दिन और आईसीयू में रखा गया था। देखते ही देखते 3 दिन पूरे हो चुके थे। आज सुमन को आईसीयू से प्राइवेट रूम में शिफ्ट करना था और आज ही दीवा को वापस पेलिंग के लिए निकलना था। दीवा ने अभी तक इस बारे में आर्यांश से बात तक नहीं की थी। दीवा ने अपनी पैकिंग कर ली थी तो वही सुमन को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। आर्यांश उन्हीं के पास मौजूद था। मैंने कहा था ना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और अभी तो हमें साथ में और भी अच्छा वक्त बिताना है, आर्यांश ने हल्के लहजे में कहा। सुमन बिना कुछ बोले मुस्कुरा दी थी। वैसे भी वो अभी तक ठीक से रिकवर नहीं हुई थी तो डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा बातचीत करने से मना किया था। सर्जरी के बाद आर्यांश भी पहली बार उनसे मिलने के लिए आया था। आर्यांश ने महसूस किया सुमन इधर उधर देख रही थी। उसने सिर हिलाकर कहा, आप दीवा को ढूंढ रही हैं, वो यहीं है, बस आती ही होगी। सुमन के बिना कुछ कहे ही आर्यांश समझ गया था। आर्यांश ने दीवा के बारे में बताया ही था कि दीवा वहां पर पहुंच गई थी। उसने सुमन को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा, अब आपको किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको खुद के लिए नहीं बल्कि हम दोनों के लिए ठीक होना है। हाँ दीवा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको डिस्चार्ज मिलते ही मैं आपको अपने साथ मुंबई लेकर जाऊंगा, और आप यही चाहती थी ना कि मैं पेलिंग में ना रहूं, हम दोनों साथ मुंबई चलेंगे, आर्यांश बोला। दीवा को यही लगा था कि आर्यांश सुमन के ठीक होते ही उन्हें पेलिंग लेकर जाएगा, क्योंकि उसे उस जगह पर लंबे वक्त तक रुकना था। लेकिन जैसे ही उसने आर्यांश के वापस मुंबई जाने की बात सुनी तो दीवा के चेहरे पर मायूसी के भाव उभर आए थे। शायद किस्मत उन्हें थोड़े ही टाइम के लिए साथ लेकर आई थी और एक बार फिर वे एक दूसरे से अलग होने जा रहे थे। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, मैंने कंपटीशन में एक कहानी लिखी है और उस पर ज्यादा रीडर होने जरूरी है, एक बार आप पढ़कर ट्राई कीजिएगा, आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। छोटा सा प्रोमो शेयर कर रही हूँ, आपको मेरे प्रोफाइल पर पिंजर अ केज ऑफ इविल डिजायर्स मिल जाएगी। पंछी श्रीवास्तव, जिसकी लाश के सामने उसका पूरा परिवार उसके जाने का गम मना रहा था, तो उसी के अंतिम संस्कार के दिन अचानक पंछी उनके सामने आ गई थी। पूरे 2 महीने तक गायब रही पंछी आखिर कहाँ थी और कौन था उसके पीछे, जिसने पंछी को उसके जीते जी मरा हुआ साबित कर दिया था।